ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सोजीवं स्वाद्वैतं स्वावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभश्च कृपासिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरातिशे नमः। संकर्षण कर्णतसै गर्वदोष च पायवधीसै शेषश्च जस्यां सकला सनित्यानन्द खरां शरणं ममास्तु। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी श्रीमद्भागवत महापुराण की। आज हम लोग श्रीमद्भागवतम के सप्तम स्कंद अध्याय 5 श्लोक संख्या 6। श्री नारद उवाच श्रुत्वा पुत्र गिरो दैतः परपक्ष समाहिताः श्रुत्वा पुत्र गिरो दैतः परपक्ष समाहितः जहास बुद्धिबालानां भिद्यते परबुद्धिभिः जहास बुद्धिबालानां भिद्यते परबुद्धिभिः। शब्दार्थ श्री नारद वाच। नारद मुनि ने कहा, श्रुत्वा सुनकर पुत्र गिरह अपने पुत्र की उपदेशमयी वाणी, दैतः हिरण्यकशिपु परपक्ष शत्रु की ओर समाहितः श्रद्धायुक्त जहास हसा बुद्धि ही बुद्धि बालानाम छोटो बालक को भिद्यते प्रदूषित होती है पर बुद्धि भी शत्रु पक्ष के सिखलाने से। श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद एवं तात्पर्य। नारद मुनि ने कहा, नारद मुनि ने आगे कहा, जब प्रह्लाद महाराज ने भक्तिमय आत्म साक्षात्कार के विषय में बतलाया और इस तरह अपने पिता के शत्रु पक्ष के प्रति अपनी स्वामी भक्ति दिखलाई, तो असुरराज हिरण्यकशिपु ने प्रह्लाद की बातें सुनकर हंसते हुए कहा, शत्रु की वाणी द्वारा बाल बुद्धि इसी तरह बिगड़ी जाती है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, हिरण्यकशिपु असुर होने के कारण विष्णु तथा उनके भक्तों को अपना शत्रु मानता था, इसीलिए यहाँ पर परपक्ष शत्रु की ओर शब्द व्यवहृत हुआ है। हिरण्यकशिपु ने कभी भी विष्णु या कृष्ण की बातें नहीं मानी, प्रत्युत वो किसी भी वैष्णव की बुद्धि से क्रोधित हो उठता था। भगवान विष्णु या कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज, अन्य सारे कर्तव्यों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। किंतु हिरण्यकशिपु जैसे असुरों ने इससे कभी सहमति नहीं दिखलाई। अतएव कृष्ण कहते हैं, नामाम दुष्कृतन मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाहा माया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रितः। जो दुर्जन निपट मूर्ख है, जो मनुष्य में अधम है, जिनकी बुद्धि मोह द्वारा नष्ट हो चुकी है और जो असुर के नास्तिक भाव को धारण करने वाले हैं, ये मेरी शरण में नहीं आते। हिरण्यकशिपु असुर स्वभाव का, असुर भाव का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे लोग मूढ़ तथा नराधम होने के कारण कभी भी विष्णु को परम पुरुष रूप में स्वीकार नहीं करते और न उनकी शरण ग्रहण करते हैं। स्वाभाविक ही था कि हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रह्लाद पर अत्यधिक क्रुद्ध होता कि वो शत्रु पक्ष द्वारा प्रभावित हो रहा था। स्वाभाविक ही था कि हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रह्लाद पर अत्यधिक क्रुद्ध होता कि वो शत्रु पक्ष द्वारा प्रभावित हो रहा था। अतएव उसने आदेश दे दिया कि उसके पुत्र के निवास स्थान में नारद जैसे साधु पुरुषों को प्रविष्ट न होने दिया जाए, अन्यथा वैष्णव उपदेश से प्रह्लाद अधिक बिगड़ जाएगा। यही श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य समाप्त। तो जो दशम जो श्रीमद् भागवत महापुराण 10 लक्षण से युक्त है। भागवत महापुराण 10 लक्षण से युक्त है। जो सप्तम स्कंद है ये उति लक्षण इसमें है। उति उतयः कर्म वासना, वासना उति शब्द करते हैं वासना। तो वासना दो ही प्रकार के हैं, एक शुभ वासना और एक अशुभ वासना। तो प्रहलाद जी ये शुभ वासना का प्रतीक है। प्रहलाद जी जो है शुभ वासना, और शुभ वासना आया कहाँ से? गुरु की कृपा से, संतों की कृपा से, नारद मुनि की कृपा के कारण उसमें शुभ वासना का उदय हुआ। और हिरण्यकशिपु ये अशुभ वासना का प्रतीक है। अशुभ वासना आने के कारण संतों का क्रोध, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अशुभ वासना हिरण्यकशिपु में है, इसका कारण संतों का क्रोध, संतों का अभिशाप, चतुष्कुमार का अभिशाप के कारण उसमें अशुभ कारण, अशुभ वासना का उदय हुआ। तो ये जो पांचों अध्याय, हिरण्यकशिपु का साधु सदृश पुत्र प्रह्लाद महाराज, प्रह्लाद महाराज का इसमें गुण महिमा का वर्णन है। तो प्रह्लाद महाराज पहले हम लोग कुछ दिनों से सुनते हुए आ रहे हैं कि प्रह्लाद महाराज, जब उनके पिता हिरण्यकशिपु ने पूछा बेटा क्या सीखा गुरुकुल में, तो उन्होंने कहा कि गुरु पिताजी मैंने जो उत्तम शिक्षा प्राप्त किया उसका मैंने सुनाता। तत् साधु मन ने असुर वर्ज देहिनाम सदा समुद्र विघ्न धियम असद ग्रहात हित्यात्मपातम गृहम अंधकूपम वनम गतोजद हरिमाश्रयेत। कि प्रह्लाद महाराज ने उत्तर दिया, हे असुर श्रेष्ठ दैत्यराज, जहाँ तक मैंने अपने गुरु से सीखा है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने क्षणिक देह तथा क्षणिक गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है वो निश्चय ही चिंताग्रस्त रहता है, क्योंकि वो ऐसे अंधे कुएं में गिर जाता है जहाँ जल नहीं रहता, केवल कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। मनुष्य को चाहिए कि इस स्थिति को त्याग कर वन में चला जाए। स्पष्ट अर्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वो वृंदावन जाए और जहाँ केवल कृष्ण भावनामृत व्याप्त है, और इस तरह वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करे। तो इस बात को सुनकर हिरण्यकशिपु ने कहा कि नारद मुनि इस हिरण्यकशिपु का मन का बात को बता रहे हैं, उनका मन में क्या चल रहा है। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को सुना रहे क्या कि हिरण्यकशिपु के मन में क्या, इस बात को सुनकर हिरण्यकशिपु के मन में क्या उदय हो रहा है। जब प्रह्लाद महाराज ने भक्तिमय साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार के विषय में बतलाया, यहाँ तीन पॉइंट इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि भक्तिमय आत्म साक्षात्कार क्या है। यहाँ प्रभुपाद जी तत्व अनुवाद में लिखे हैं, जब प्रह्लाद महाराज ने भक्तिमय आत्म साक्षात्कार के विषय में बतलाया, तो प्रश्न होता है भाई भक्तिमय आत्म साक्षात्कार है क्या, ये कहाँ से प्राप्त होता है, ये कैसे प्राप्त होता है, इसका अंतिम फल क्या है, और जब फल प्राप्त हो जाता है इसका क्या दशा होती है। प्रश्न बिंदु क्या, भक्तिमय आत्म साक्षात्कार है क्या। जो वाणी सुनाया प्रभुपाद जी अनुवाद में लिखते हैं भक्तिमय आत्म साक्षात्कार का वाणी सुनाया, तो प्रश्न होता है ये है क्या, कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, और इसका अंतिम लक्ष्य क्या है। पहला प्रश्न, प्रश्नों को मैं पहले सुनाते हैं, फिर दूसरा प्रश्न है, प्रश्न ये आता है कि जब हिरण्यकशिपु ने देखा कि आपने जो पुत्र प्रह्लाद महाराज, प्रह्लाद अपने शत्रु पक्ष का बातें कर रहे हैं, शत्रु पक्ष का आश्रय लेकर अपने स्वामी भक्ति दिखला रहे हैं,
अपने स्वामी भक्ति दिखला रहे। प्रहलाद जी भगवान श्री हरि को अपना स्वामी मानते हैं कि प्रभु स्वामी है, मैं उनका नौकर हूँ। यहाँ प्रश्न होता है भाई स्वामी कौन है इस संसार में, स्वामी कौन है? दूसरा प्रश्न, प्रश्न को पहले याद ध्यान रखने से उत्तर अच्छा अपने आप आ जाएगा। फिर तीसरा ये बिंदु ये है कि जब प्रहलाद महाराज को इस प्रकार सुनते हुए देखा, कहते हुए देखा कि भक्तिमय आत्म साक्षात की वाणी सुना रहे, अपने पिता को सुना रहे, तो उसमें वो हंसते हुए कहा, हंसा। जो जागतिक सांसारिक पुरुष है वो भक्त का चरित्र देखकर हंसते हैं, पागल, वो सोचते पागल है। जो सांसारिक पुरुष है वो भक्त का चरित्र देखकर, भक्त का क्रियाकलाप देखकर वो हंसते हैं। ये तीन बिंदु पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला बिंदु क्या है? भक्तिमय आत्म साक्षात्कार क्या है? भक्तिमय आत्म साक्षात्कार कहाँ से प्राप्त होता है? गुरु से प्राप्त होता है। गुरु के बिना ये आत्म साक्षात्कार ज्ञान उपदेश प्राप्त नहीं होता है। और ये ज्ञान क्या होता है? न देह और जड़ चेतन का ग्रंथि का भेदन करने सिखा देते हैं। भाई ये जड़ है, ये चेतन है। शरीर जड़ है, शरीर में स्थित जो प्रभु है, आत्मा है, वो नित्य है, अविनाशी है। इस ज्ञान को प्रदान करते हैं, ये है आत्म साक्षात्कार। और इस संपूर्ण ज्ञान कहा दिया है श्रीमद् भागवत गीता में। शिव भगवान ने द्वितीय अध्याय में इसका पूर्ण रूप से विवेचन किया। सबसे पहले शिक्षा ये दिया गीता में, मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये है भक्तिमय आत्म साक्षात्कार वाणी। तो इसका गुरु के माध्यम से पहले गुरु इस ज्ञान को कराते हैं। गुरु का कर्तव्य है कि इसका जड़ चेतन ग्रंथि छेदन हो जाए। एक कैसे प्राप्त होता है? भक्ति के माध्यम से प्राप्त होता है। प्रहलाद जी महाराज आगे कहेंगे कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सूक्ष्म आत्म निवेदनम। ये नवविदा जो भक्ति है इसी के माध्यम से ही प्राप्त होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। तले गुरु के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हुआ। असाधना क्या? भक्ति। भक्ति के नौ लक्षण, नौ प्रकार के, उसमें भी पांच प्रधान है। नौ की अगर संक्षेप में कहा जाए, क्या पांच प्रधान क्या है? साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रद्धाय श्रीमूर्ति सेवन। ए पंच साधन श्रेष्ठ सर्व साधन मध्य कृष्ण प्रेम जन्माये पाचिर अल्प संगे। जो पांच प्रधान अंग है भक्ति का, सबसे पहले क्या है? भागवत श्रवण, साधु संग, नाम कीर्तन, मथुरावास अर्थात धामवास और श्री विग्रह की सेवा। ये पांच मुख्य अंग है भक्ति के। और इससे प्राप्त क्या होता है? भगवान का साक्षात्कार हो जाता है अगर निष्ठा से किया जाए। हाँ, आदो श्रद्धा तत्व साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति, उसके बाद प्रेम स्तर को वो प्राप्त कर लेते हैं। तो निष्ठा की जरूरत है। तो यह सबसे पहला बिंदु क्या है? भक्तिमय आत्म साक्षात्कार का उपदेश उन्होंने दिया। तो फिर द्वितीय बिंदु था कि स्वामी भक्ति देखलाए। हिरण्यकशिपु देखे कि मेरे जो पुत्र प्रह्लाद अपने शत्रु पक्ष के प्रति ये स्वामी भाव दर्शन करा रहे, कि हमारे शत्रु को ये स्वामी मान रहे। प्रह्लाद जी जानते थे जगत के स्वामी एकमात्र श्री कृष्ण, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। अगर दास्ता अभिमान रहे तो उसका कोई चिंता नहीं। जय जय श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री कृष्ण बलराम जीव की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर जीव की। तो स्वामी है कृष्ण, स्वामी है कृष्ण, हम सब उनका दास। जैसे घर में मालिक है, नौकर का कोई चिंता नहीं, उनका ना भय है ना चिंता है, मालिक का सारा टेंशन मालिक का है, उनका कोई टेंशन नहीं, क्या कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ के सारे भक्त किसी का किसी किसी चीज़ की भाव पता नहीं, क्या भाव किस भाव से चार डाल आ रहे हैं, आलू अभी कितना रुपये किलो मुझे पता नहीं, क्योंकि ये स्वामी हैं, इस स्वामी के द्वारा स्वामी इसका निर्वाह कर रहे हैं। तो प्रह्लाद महाराज स्वामी भक्ति दिखलाए, क्योंकि दास्ता में जो आनंद वो आनंद और किसी में नहीं है, इसलिए दास्ता को स्वीकार करना है, मैं प्रभु के दास हूँ। और तीसरा बिंदु था, और अच्छा इसमें एक है शत्रु पक्ष, शत्रु पक्ष कौन होते हैं, जो प्रभु के नाम रूप लीला से हटा दे, वंचित कर दे, वो है शत्रु। श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला से अलग कर दे, वो है शत्रु। वो हो सके पिता माता भी शत्रु हो सकते हैं, अगर भक्ति ना सिखाए, अगर पिता माता भक्ति ना सिखाए तो वो शत्रु हो जाएगा। इसलिए शत्रु वही है जो प्रभु के नाम रूप गुण लीला भक्ति से वंचित करे, वही है शत्रु। और तीसरा बिंदु था कि प्रह्लाद जी जब इस प्रकार कहने लगे, भक्तिमय के उपदेश प्रदान करने लगे, तो प्रह्लाद जी की कथा सुनकर हंसने लगे, कौन, हिरण्यकशिपु। तो हंसना एक पागलपन का लक्षण है, हंसना किसका लक्षण है, पागलपन। सांसारिक जागतिक मानुष भक्तों का कार्यकलाप देखकर हंसते रहते हैं, ये पागल है, इसका कोई मतलब, इनका माथा भ्रष्ट हो गया, खराब हो गया। अगर संसार में ये भी देखा गया, जो सांसारिक जो पागल होते हैं, संसार के लोग जो पागल होते हैं भौतिक विषय के लिए, तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ता है, उसको आगरा जेल में, आगरा में इलाज कराते हैं। कहाँ इलाज कराते हैं, आगरा में इलाज होता है। और जो भक्ति में पागल है उसका इलाज कहाँ होता है, वृंदावन धाम में होता है कि नहीं होता है। वो वृंदावन धाम छोड़कर कोई जाना नहीं चाहते, उसका इलाज एकमात्र श्री वृंदावन धाम। आज जो सांसारिक देह सुख, सांसारिक सुख में जिसका चित्त वृत्ति लगा हुआ है, उसका इलाज आगरा में जाना पड़ेगा, वह और कोई बाहर जाना पड़ेगा, हैं, रांची जाना पड़ेगा। और जो भक्ति का जो पागल है, जो कृष्ण भावनामृत पागल है, उसके लिए इसलिए प्रह्लाद महाराज कहे, वनम गतो जत हरिम आश्रय, हरि का आश्रय लेकर श्री वृंदावन धाम में जाना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ कुछ टीका में दिए, फिर बाद में आगे चर्चा को आगे ले जाएंगे। प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि हिरण्यकशिपु भगवान कृष्ण या विष्णु को शत्रु मानते थे, भगवान विष्णु या कृष्ण, या कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम ब्रज, अन्य सारे कर्तव्य को त्याग कर मेरी शरण में आओ। किंतु हिरण्यकशिपु जैसे असुर ने इससे कभी सहमति नहीं दिखलाई, अतएव कृष्ण कहते हैं नमाम दुष्कृत न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहित ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। चार प्रकार के लोग भगवान के शरणागत नहीं होते। सबसे पहले कौन है, मूढ़ है, मूढ़ व्यक्ति भगवान के शरण में नहीं जाते। मूढ़ किसको कहते, जिसका देह में आसक्ति, मूढ़ जिसे गाधा जो है उसका शरीर प्रति ध्यान है, आत्मा के प्रति ध्यान नहीं है, उस स्वरूप को जानने के लिए प्रयास नहीं करते, उसको संसार में मूढ़ कहा जाता है। और सामान्य सांसारिक सुख के लिए दिन रात परिश्रम करते, जिसका देह आत्मा में कोई ज्ञान नहीं है वो वास्तविक मूढ़ है। तले मूढ़ नराधम कौन है, जो बहुत ऐश्वर्य धन संपत्ति बहुत है किंतु स्वरूप ज्ञान नहीं है, भगवान जो साक्षात श्री कृष्ण जीवन का लक्ष्य है ये ज्ञान जिसमें नहीं है वो है नराधम। सांसारिक बहुत संपदा है, बहुत ऐश्वर्य है किंतु उनका स्वरूप ज्ञान नहीं है, मैं कृष्ण का दास हूँ व कृष्ण मेरा स्वामी है, एक ज्ञान जिसका नहीं है वो नराधम है। माया अपहृत ज्ञान कौन है? बड़े बड़े वैज्ञानिक, दार्शनिक, साहित्यिक, जो जो कविता लिखते माने लेखक, ये सब बड़े बड़े ज्ञानी है, संसार से बहुत ज्ञान ग्रहण किए, किंतु भगवान के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, भगवान के स्वरूप को नहीं जानते, भगवान के बारे में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं करते। ये है माया द्वारा अपहृत ज्ञान, माया से इनका ज्ञान ढक लिया, इनका सारा संसार का ज्ञान इसमें है किंतु भगवत ज्ञान इसमें नहीं है, इसलिए माया अपहृत ज्ञान। और आश्रुम भाव आश्रिता, आश्रुम भाव आश्रित कौन है? जो मायावादी है, जो भगवान को खंडन करना चाहते हैं, भगवान को मारना चाहते हैं, वो है मायावादी। हाँ, तो इसीलिए महाप्रभु यह प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये सब व्यक्ति दुष्कृति होते हैं, ये कभी भगवान के शरण में नहीं जाते। मूढ़ा, नराधम, माया अपहृत ज्ञान और आश्रुम भाव आश्रिता। हिरण्यकशिपु में सारा गुण था, ये मूढ़ भी है, नराधम भी है, माया के द्वारा अपहृत ज्ञान भी है और आश्रुम तो है ही, तो इसीलिए ये भगवान को मारना चाहते हैं, भगवान को मारना चाहते हैं, इसीलिए इनका शरणागति होने का कोई संभावना नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी ये लिखते हैं कि प्रहलाद जी यहाँ एक अंतिम एक बड़ा अच्छा उपदेश है, असुर का ये भावना होती है कि बेटा कृष्ण भक्त ना हो जाए, इसलिए किसी वैष्णव संगति में ना जाए, किसी वैष्णव संगति में ना जाए, कोई वैष्णव इनकी माथा को माने माथा को बिगड़े ना दे। हाँ, इसलिए हिरण्यकशिपु अपने साथियों को उपदेश करते कि कोई वैष्णव ना आ जाए प्रहलाद के पास, अगर प्रहलाद क्योंकि बाल बुद्धि है, इसको जो सिखा देंगे वही सीख जाएगा, किंतु प्रहलाद ऐसे नहीं, प्रहलाद महान भक्त है, मातृ गर्भ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। तो आज एक बड़ी सुंदर बातें सुनने को मिलेगा कि यहाँ प्रभुपाद जी अनुवाद में लिखते हैं, भक्तिमय आत्म साक्षात्कार का जिसको हो गया उसकी दशा क्या होती है? भक्तिमय आत्म साक्षात्कार जिसको हो जाता है उसकी दशा क्या होती है? तो श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण भक्त भाव में आकर इन्होंने ये दृश्य दिखाया। श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष आज हम इसी को महाप्रभु के उद्गार है, इस किसी का उद्गार नहीं, महाप्रभु अपने उद्गार है, इसी को हम सुनेंगे। संक्षेप में समय तो बहुत कम है। हाँ, प्रेमोच्छेद रुजो अवगच्छति हरि नायम न च प्रेमवा, अयम हरि प्रेमोच्छेद रुजो न अवगच्छति। इस हरि में प्रेम की भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु गोपी भाव में कहते हैं, ये जो श्री कृष्ण जो है अयम हरि, ये हरि प्रेम रुज, रुज माने पीड़ा, प्रेम की पीड़ा यह नहीं जानते हैं, प्रेम की जो की पीड़ा होती है ये भगवान कृष्ण नहीं जानते। न च प्रेम वा स्थान स्थानम न अवैते, प्रेम स्थान अस्थान को भी नहीं जानते, कहाँ प्रेम करना है कहाँ प्रेम नहीं करना है ये प्रेम नहीं जानते हैं। मदनोपि न जानाति न दुर्बला, कामदेव किस पर प्रेम करना है ये भी नहीं जानते। महाप्रभु कहते कि मैं दुर्बला हूँ, गोपी के भाव में स्त्री को दुर्बला कहते हैं, गोपी को दुर्बला कहते हैं, तो दुर्बला से प्रेम करना नहीं चाहिए, कि दुर्बला है, अगर प्रेम करे तो ये मर जाएगी, अगर प्रेम बिछोड़ जाए तो बोले ए हरि ये भी नहीं जानते किससे प्रेम करना है। अन्य अन्य व्यक्ति हो वेद न च अन्य दुखम अखिलम, अन्य व्यक्ति अन्य दुख को नहीं जानते, जो मेरा अंदर क्या दुख है दूसरे कोई नहीं जानते, मैं किस पीड़ा से भोग रहे किस पीड़ा का अनुभव कर रहे दूसरे कोई नहीं जानते, महाप्रभु अंतिम दशा, महाप्रभु किस दशा में इस बात को कर रहे हैं, महाप्रभु 24 वर्ष नवद्वीप धाम में रहे, महाप्रभु 24 वर्ष कहाँ रहे, नवद्वीप धाम में, 6 वर्ष उन्होंने गमनागमन किए, पूरा भारतवर्ष घूमे, 6 वर्ष महाप्रभु पूरी धाम में रहकर उपदेश दिए, कहीं गए नहीं, भक्तों से मिलते थे, श्री चैतन्य महाप्रभु भक्तों से मिलते किंतु कभी कहीं बाहर नहीं गए। ये 6-6-12 वर्ष हो गया, और आखिरी 12 वर्ष महाप्रभु 2-3 भक्तों से ही मिलते थे, स्वरूप दामोदर राय रामानंद की अंतिम माने पीड़ा की विरह अवस्था, प्रेम की विरह सहन नहीं होता है, केवल रामी रामानंद स्वरूप दामोदर गीत गोविंद चंडीदास जो पद्यावली ये सब बातें सुनाकर महाप्रभु थोड़ा सांत्वना देते थे। महाप्रभु किसी प्रकार से बहुत हृदय में पीड़ा है, प्रेम की पीड़ा, इसको किसी प्रकार से ये करते। तो अन्य वेद न अन्य दुख दुखम अखिलम, अन्य अन्य व्यक्ति अन्य दुख को नहीं जानते, महाप्रभु कहते हैं न जीवनम वास्रवम, आश्रव माने हे विश्वास नहीं, ये जीवन का कोई विश्वास नहीं है, ये जीवन कब तक रहेगा कोई भरोसा नहीं। दी त्रीणी दिनानी जौवन इदम जौवनम, इस जौवन 2-3 दिन की है, ये जौवन बहुत दिन तक नहीं रहेगा, महाप्रभु अपने जीवन का खेद व्यक्त कर रहे हैं, इस जीवन अधिक दिन तक नहीं रहेगा। दी त्रीणी दिनानी जौवनम इदम, इदम जौवनम दी त्रीणी दिनानी, 2-3 दिन तक ही रहेगा। और कि हा हा हे विधाता का गति, मेरी क्या गति होगी, अभी तक प्रभु को दर्शन नहीं मिल पाया, हाँ इसी प्रकार से दिन व्यतीत हो रहा है। इसका कहने का उद्देश्य महाप्रभु भक्तिमय आत्म साक्षात्कार के अंतिम दशा क्या होती है इसका निरूपण कर रहे हैं। हा विधे का गति, हे विधाता मेरी क्या गति होगी, 2-3 दिन के जीवन, इस जीवन का कोई विश्वास नहीं है, अरे हरि प्रेम जे प्रेम की पीड़ा भी नहीं जानते हैं, हाँ ये प्रेम कहाँ करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए ये प्रेम भी नहीं जानती है, तो हे विधाता अभी मेरी क्या गति होगी। फिर एक श्लोक लिखते हैं, श्री कृष्ण रूपादि निषेवनम विना, हाँ व्यर्थानि मेहानि अखिलेन्द्रियानि अलम, कृष्ण रूप को आस्वादन मैंने नहीं कर पाया, श्री कृष्ण रूपादि निषेवनम बिना मैं व्यर्थानि मैं अहानि अखिलेन्द्रियानि अलम, हाँ इस समस्त इंद्रियों को मैंने वृथा ही धारण किया हो, क्योंकि कृष्ण का रूप का आस्वादन नहीं हो रहा है। श्री कृष्ण रूपादि निषेवनम बिना, निषेवन किए बिना, सेवन किए बिना, व्यर्थानि मैं अहानि अखिलेन्द्रियानि, अखिल इंद्रिय समस्त इंद्रिय जब सभी इंद्रिया को मैंने व्यर्थ ही धारण किया हो, इसे कोई काम नहीं है, फालतू के समय व्यर्थ जा रहे, क्योंकि कृष्ण रूप का निषेवन हो नहीं रहे। कृष्ण रूपादि निषेवनम बिना व्यर्थानि मेहानि अखिलेन्द्रियानि अलम, पर्याप्त पाषाण शुष्केन पाषाण शुष्के शुष्के सु पाषाण शुष्केन धन इंधन भार कानि अहो, मैं भार ग्रहण किया हूँ, पाषाण सदृश ये इंद्रिया और जो मन जो है सब भार स्वरूप है, पाषाण सदृश है, पाषाण और शुष्क ईंधनेर शुष्क ईंधन के समान भार ढो रहा हूँ, ये सब भार लग रहा है महाप्रभु को, कि ये सब भार जैसे मुझे लग रहा है, जो इंद्रिया जो है जो दीन भी है ये दीन भी महाप्रभु को भार लग रहा है, दीन बीत नहीं रहे हैं, दिन महाप्रभु जैसे एक एक दिन बहुत जैसे बहुत दिन बहुत समय जा रहे हैं, बहुत भारी लग रहा है महाप्रभु को। अहम कथम बधारयामि, मैं कैसे इसको धारण करूं, आहा की रूपे किस प्रकार से मैं इस शरीर को धारण करूं, श्री कृष्ण रूपादि निषेवनम बिना व्यर्थानि महा अहानि अखिलेन्द्रियानि अलम पाषाण शुष्केन्धन भारकानि अहो, भार स्वरूप मैं इस शरीर को धारण कर रहा हूँ, इंद्रिय को धारण कर रहा हूँ, दिन भी भार जैसे लग रहा है, व्यर्थाने विभर में मैं धारण कर रहा हूँ, ताने कथम कैसे धारण कर रहा हूँ, मैं हतत्र मैं निर्लज्ज हूँ, व्यर्थ मैं अपने को महाप्रभु निर्लज्ज मान रहे हैं। फिर महाप्रभु कहते हैं, जदा जात दैवात मधुरिपु असौ लोचन पथम, यदि कभी महा श्री कृष्ण मेरे लोचन पथ में आ जाए, दृष्टि पथ में कभी दर्शन दे दे, तदस्माकम चेत मदन हत के न आहृतम अभूत। कभी कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु दर्शन दिया, किंतु उस समय क्या हुआ कि मदन और मादन दो बैरी महाप्रभु को बाधा दे दिया, दर्शन करने नहीं दिया। तदा मदन हत केन अस्माकम चेत आहृतम अभूत। उस समय जो काम है महाप्रभु को दर्शन करने नहीं दिया। भगवान कृष्ण दर्शन दे रहे, किंतु बीच में कौन आ रहे, मदन काम व प्रेम, यह काम अर्थ प्रेम अर्थ लिया जाए, हाँ, तो प्रेम महाप्रभु दर्शन करने नहीं दे रहा है। पुनर्जस्मिन ऐसा क्षणम अपनी दृश्य रहती पदवीम विधस अबर दीदी कहूँ पुनः जस्मिन, पुनः कभी अगर भगवान दर्शन दे, पुनः जस्मिन कथ क्षणम अपनी दृश्य, क्षण भर के लिए भी भगवान श्री चैतन्य महापुरुष बोल रहे हैं गोपी भाव में, कभी दर्शन दे तो मैं क्या करूँगा महाप्रभु गोपी भाव में क्या करूंगी सखी रूप में, हाँ, विधस्यामत तस्मिन अखिल घटिका, क्षण भर के समय में मैं श्री कृष्ण का श्रृंगार करूंगा। रत्न खोचिता, रत्न से महाप्रभु कह रहे कि महा श्री कृष्ण में श्रृंगार करूंगा। फिर एक बड़ा सुंदर बहुत महाप्रभु कुछ श्लोक जो है बड़ा मन गंभीर श्लोक, न प्रेम गंध से दरापि न हरो, हरि में मेरा प्रेम गंध नहीं है, महापुरुष स्वयं कहते हैं, न प्रेम गंध अस्ति दरापि न हरो, हरो न प्रेम गंध अस्ति, हरि में मेरा कोई प्रेम गंध नहीं है, क्रंदा में मैं क्रंदन करता हूँ सौभाग्यतरम प्रकाशितुम, मेरी मेरा सौभाग्य बहुत अच्छा है कि मैंने मानव तनु प्राप्त किया, किंतु मैंने हरि का प्रेम मुझ पर नहीं है, हाँ, न प्रेम गंध अस्ति, प्रेम गंध भी नहीं है, दरा भी मैंने थोड़ा सा भी, मैं हरो हरि में मेरा थोड़ा सा भी प्रेम नहीं है, इसलिए मैं महाप्रभु कह रहे हैं मैं क्रंदा में रोता हूँ, हाँ, सौभाग्य तरम प्रकाशितम, सौभाग्य ये है कि मैंने मनुष्य शरीर प्राप्त किया, फिर भी मैंने मुझे मेरा कोई कृष्ण प्रेम नहीं है। वंशी विलासी आनंद लोकनम बिना विभर में, वंशी विलास श्री कृष्ण का सुंदर रूप, हाँ, अवलोकन बिना दर्शन किए बिना मैं अपना धारण कर रहा हूँ शरीर, कैसे प्राण पतंग कान वृथा, जिस प्राण पक्षी है हृदय में प्राण पतंग है, इसको मैं वृथा धारण कर रहा हूँ, प्राण पतंग कान वृथा, प्राण पतंग को मैंने वृथा धारण कर रहा हूँ, किस लिए कि वंशी विलास आनन लोकनम बिना, भगवान कृष्ण के दर्शन किए बिना प्राण पतंग को मैं वृथा धारण किया हूँ, हरि में मेरा कोई प्रेम गंध तो है ही नहीं, इसलिए मुझे रोना आता है, हाँ, दिन भर में रोता हूँ इसीलिए कि मुझे मेरा अंदर कोई प्रेम गंध नहीं है, हाँ, और कि वंशी विलासी लोकन बिना, वंशी विलास के दर्शन के बिना विभर में प्राण पतंग कान वृथा, प्राण पतंग को मैंने वृथा धारण किया हूँ। ये बड़ा सुंदर सुंदर पद है श्री कृष्णदास कवरेज गोस्वामी का, मैं संस्कृत में जिस महाप्रभु जिस अंश को भगवान के पास जाकर कहते थे, हृदय की पीड़ा को व्यक्त करते थे, उसी को मैं आस्वादन कर रहा हूँ। पीड़ा भी नव काल कुटो कटुता गर्वस्य निर्वासन, किसी के अंदर प्रेम हो जाए उसका जो क्या ज्वाला होती है, किस कितना कितनी ज्वाला होती है, इसका वर्णन करें, किसी में किसी में प्रेम आ गया, जैसे बोले सांप के बच्चा बहुत विषैले होते हैं, वो काटने में जितना ज्वाला नहीं होती है उससे भी ज़्यादा ज्वाला होती है, प्रेम जिसका प्रेम अंदर आ गया, जिसका अंदर प्रेम हो गया, उसका सांप के बच्चा काटने से भी उससे ज़्यादा अधिक ज्वाला प्रेम किसी में अंदर हो गया। अगर किसी में असे प्रेमा जार मने, अच्छा, प्रेम सुंदरी नंदन परो जागृति, जिसका अंदर में प्रेम जागृत हो गया उसका तेई दशा, जैशांतरे ज्ञानते फुटमश वक्र मधुरा स्तेनैव विक्रांतय, एक तो ज्वाला प्रेम की उदय होने से एक प्रकार की ज्वाला, और प्रेम जो प्रेम में जो आनंद है वो आनंद भी अद्भुत है, वो कभी त्यागने के विचार नहीं होते,
अबर जिस समय आनंद की धारा छरित होता है, प्रेम की आनंद की धारा छरित होता है, अमृत समुद्र से भी बढ़कर है वो जाला। यहाँ अनुवाद में लिखते हैं थोड़ा एक पद सुनाते हैं, कृष्णदास कबीर जी का स्वामी का पद बड़ा सुंदर है। जे काले देखे जगन्नाथ श्री राम समुद्र साथ, तबे जाने आइलम कुरुक्षेत्र, सफल होइल जीवन देखिल पद्म लोचन, जुड़ाइल तनु मन नेत्र। गौड़ेर सन्निधाने, महाप्रभु पुरी में गौड़ेर सन्निधान में खड़े है, गौड़ेर सन्निधाने रही करे दर्शने, से आनंदेर की कहिबो बोले, से आनंद की आनंद किया बोलो। गौड़ स्तंभेर तले आछे एक निम्न खाले, से खाल भरिल अश्रु जले, एक छोटा सा खाल है उसमें पूरा आंखों में आंसू से भर गया। ताहा होइते घरे आसी माटी रही पोरे बसी, नखे करे पृथ्वी लिखन। जब महाप्रभु घर में आए नख से अपने नाखून से पृथ्वी लिख रहे। हाहा कहा वृंदावन कहा गोपेंद्र नंदन, हाहा कहा वृंदावन कहा गोपेंद्र नंदन, कहा से वंशीवदन, कहा से वंशीवदन, कहा से त्रिभंग ठाम, कहा से वेणुगान, कहा से त्रिभंग ठाम, कहा से वेणुगान, कहा से जमुना पुलिन, कहा से जमुना पुलिन, कहा रास विलास, कहा रास विलास, कहा नृत्य गीतहास, कहा रास विलास, कहा नृत्य गीतहास, कहा प्रभु मदन मोहन, कहा प्रभु मदन मोहन। उठिल नाना भाव बेग मने होइल उद्वेग, क्षण मात्र नारे गंगाइते, प्रबल बिरहानल धैर्य होइल टलमल, नाना श्लोक लागिला पोड़िते। महाप्रभु भिन्न भिन्न श्लोक का उच्चारण कर रहे, जिससे महाप्रभु में भाव का उदय होता था। जैसे इक्षु वन, इक्षु का माने गन्ना का खेती में जब दो तीन हाथी उसमें प्रवेश करते, दोनों में तो लड़ते हैं किंतु इक्षु वन का ध्वंस हो जाता है, जो गन्ना का जो खेती है वो खेत पूरा बर्बाद हो जाते, दोनों से लड़ते लड़ते पूरा खेती का बर्बाद हो जाते। इसी प्रकार महाप्रभु में जब हृदय में भाव का उदय होता है, भिन्न भिन्न भाव का उदय होता है, तो भाव का उदय होने से महाप्रभु शरीर का नाश हो जाता है। जैसे इक्षु वन का नाश हो जाता है जिस प्रकार से, इसी प्रकार गज के समावेश में इक्षु वन का नाश होता है, उसी प्रकार महाप्रभु में भाव का उदय होने से क्या नाश होता है, महाप्रभु का देह का नाश हो जाता है। महाप्रभु कभी घिसते हैं, खून निकल जाते हैं, शरीर अलग अलग हो जाता है, ये महाप्रभु का विकार का लक्षण। अमुनि धन्याने, महाप्रभु गायते हैं, अमुनि धन्याने दिनांतराने, हरे तदालो कनमंतरे न, अनाथ बंधो करुणैक सिंधो, हा हंत कथम नयामे। ये श्लोक तीन लोग जानते थे, एक माधवेंद्रपुरी गाते थे, एक श्रीमती राधारानी गाते थे और महाप्रभु, तीन लोग इस श्लोक के बारे में जानते थे। अमुनि धन्याने दिनांतराने, हरे तदालोकनमंतरे न, अनाथ बंधो करुणैक सिंधो, हा हंत कथम नयामे। हे दिन बंधु, हाय हाय। हे अनाथ बंधु, हे करुणैक सिंधु, हे अनाथ बंधु, हे करुणैक सिंधु, हे हरे, तदा लोकनम अंतरेनत, आपके दर्शन के बिना अधनाने अधन्याने अमुनि दिनांतराने। हाँ,
दुखपूर्वक जो दिन के समय जो दिन का जो समय बीत रहे बहुत कष्ट से बीत रहे, कथम नया में कैसे मैं इस प्राण को धारण करूं कि कैसे मैं शरीर को धारण करूं, कथम नया में। फिर कहते हैं बड़ा सुंदर श्लोक है, यहाँ एक बहुत सुंदर पद है,
तुम्हार माधुरी बोलो ताते मोर चापल ए दुई तुम्हें आमे जाने, कहा करो कहा जाओ कहा गेले तुमा पाओ ताहा मोरे कहो तो आपने, नाना भावेर प्राबल्य होइल संधि साबल्य भावे भावे होइल महारण, অসুখ চাপল্য দৈন রোষামর্ষ আদি সৈন প্রেমোন্মাদ সভার কারণ।
জিসকো মানে শুনা রে পহলে গজ যুদ্ধ, মত্ত গজ ভাবগণ প্রভুর দেহ ইক্ষুবন, প্রভুর দেহ কেসে ইক্ষুবন,
মত্ত গজ ভাবগণ ভাব ভাব মত্ত গজ ভাবগণ প্রভুর দেহ ইক্ষুবন, গজ যুদ্ধে বনের দলন,
गज युद्ध करने से क्या होता है वन का दलन हो जाता है, वन का नाश हो जाता है।
प्रभुर होइल दिव्यन माद तनु मन अवसाद भावावेश करे संबोधन, हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमन हे नयनाभिराम हा हा कदान भवितासि परम दिशोर में।
हे प्रभु कब मुझे दर्शन दोगे, महाप्रभु अपने विरह दशा का वर्णन कर रहे। यहाँ जब नारद ने देखे कि भक्ति विषय ने आत्म साक्षात्कार का जब उपदेश दिया इसको सुनकर, हाँ तो मैंने बोला था कि जे भक्तिमयी साक्षात्कार, भक्तिमयी आत्म साक्षात्कार का उपदेश, जो भक्तिमयी आत्म साक्षात्कार क्या होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, इसका प्राप्त होने के बाद इसका दशा क्या होती है, महाप्रभु इस दशा का वर्णन कर रहे हैं। किसी में आत्म साक्षात्कार हो गया उसकी क्या दशा होती है, महाप्रभु अपना जीवन काल में दर्शन करके दिखाया। तो यही वाणी को विराम देते, शिल प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।